अस्सलाम वालेकुम। मुझे आप में से कितने लोग जानते हैं? अच्छा, इसका मतलब है अभी भी ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते। मेरा नाम मालूम है या नज़िया ने बगैर इन्फॉर्मेशन के आप लोगों को बुला लिया? इन्फॉर्मेशन कोई दी थी? मैं किसको बुला रही हूँ? कौन बात करने आ रहा है? क्या बात करने आ रहा है? या ऐसे ही बस इन्वाइट कर लिया? इन्विटेशन मिला है आपको? आप हमेशा उस इन्विटेशन की तरफ जाते हैं जिस इनविटेशन को बहुत मोहब्बत से दिया जाता है, ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही है। तो जब हम अल्लाह की राह में एक दूसरे को मोहब्बत के साथ इनविटेशन दें, तो हमें चाहिए कि हम उस इनविटेशन को कबूल करें। आपको वैसे भी पता है कि हमारे रिलीजन इस्लाम के अंदर ये बात है कि अगर आपका पास कोई जेन्युइन एक्सक्यूज़ नहीं है, कोई शरई उज़र नहीं है, तो आप किसी की दावत को ठुकरा नहीं सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह, नज़िहा ने आप सबको यहाँ पर इन्वाइट किया है। असल ज़ात बुलाने वाली तो ऊपर बैठी है, जिसने तकदीर में लिखा था कि आपने और मैंने यहाँ पर इकट्ठे होना है। तो अल्लाह के नाम के साथ ही हम इंशाल्लाह अपनी आज बात को शुरू करेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान को विकरा कहा है। हम सब कुरान ही की बात सुनने के लिए, इस्लाम ही के बारे में जानने के लिए और आने वाले दिनों की तैयारी के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो हम अपने इस गैदरिंग का आगाज़ अल्लाह के नाम के साथ करेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल हुआ करता था कि जब जहाँ चंद लोग इकट्ठे हुआ करते थे, उनको खुतबा दिया करते थे। और आपको मालूम है कि वहाँ पर खुतबा अरबी ज़ुबान में दिया जाता था। आपको और मुझे किताबों के अंदर, नरेशंस के अंदर, रिवायात के अंदर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबात मिल जाते हैं। तो हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरा करते हुए उन्हीं अल्फाजों में अपनी बात का आगाज़ करेंगे जिन बातों के अंदर ताबेईन, सहाबा, तबा ताबेईन और सल्फ जो थे वो अपनी बातों को शुरू किया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वबिही नस्ताईन वनुसल्ली वनुसल्लिम अला खातमन नबीयीन इमामिना व कुदवतिना मोहम्मद इब्ने अब्दिल्लाह व अला आली व असहाबिल किराम अम्मा बाद फआऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बी कनस्तईन अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हम सबको हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज जिस मौजू पर बात करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, वो मौजू ऐसा है कि जिसके बारे में आपको बहुत इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है आप सब ऐसे हों जिनको बहुत ज़्यादा इल्म हो रमज़ान के बारे में, रमज़ान के फिक के बारे में, रमज़ान के अहकाम के बारे में। हो सकता है कि नहीं हो सकता ऐसा? तो हम यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं, उसका मकसद क्या है? कई एंगल से रमज़ान की तैयारी की जा सकती है। हर दफ़ा हम जब रमज़ान के आने से पहले इस्तकबाले रमज़ान करते हैं या तआरुफ़े रमज़ान पे कोई प्रोग्राम सुनते हैं, तो उसमें जो ख़तीब होता है, जो स्पीकर होता है, वो मुख्तलिफ अंदाज़ में बात को बयान करता है। यकीनन हर एंगल में आप रमज़ान की तैयारी एक सिटिंग में तो नहीं कर सकते। इसका तो आपको मालूम है ना कि रोज़े के मसाइल क्या हैं, रोज़े के अहकाम क्या हैं, कुरान में कितनी आयात रोज़े के मुतालिक आई हैं, उन सब की हिकमत क्या है। एक सिटिंग में, 1 घंटे से 1.25 घंटे की सिटिंग में हम सब पर बात नहीं कर सकते। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे, वो टॉपिक रमज़ान से डीपली रिलेटेड भी है और मुझे और आपको रमज़ान की इबादत से जोड़ कर रखेगा इंशाल्लाह। हमारा आज का टॉपिक यूँ समझ लें कि ये है रमज़ान ईमान और एहतसाब के साथ। दो टर्मिनोलॉजीज़ को याद रखिएगा। मैं चाहूँगी कि आप सब इसको याद रखें और मुझे उम्मीद है कि आप बाकी आने वाले मिनट्स में जागते रहेंगे ताकि मुझे याद रहे कि मैं किन टर्मिनोलॉजीज़ पर बात करना चाह रही थी, और आप सुन रहे हैं या अपनी नैप ले रहे हैं या पावर स्नूज़ लेने में बिजी हैं। सही है? कितनी टर्मिनोलॉजीज़ को आपने याद रखना है? 3, 4, 2, 5, कितनी? दो। कौन कौन सी? ईमान और एहतसाब। हमने रमज़ान को ईमान और एहतसाब के साथ कैसे गुजारना है, हम ये सीखेंगे इंशाल्लाह इस 1 घंटे में। और हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला बोलने वाले को हक बोलने की तौफीक दे और सुनने वालों को हक को जज करने वाला बनाए, ताकि हम बा अमल प्रैक्टिसिंग मुसलमान बने। رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں نریشن آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آپ نے کہا بنی الاسلام علی خمسن، اسلام کی بنیاد، اسلام کی فاؤنڈیشن پانچ چیزوں پر ہے. ایک، نمبر ون، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. و شہادت ان محمد الرسول اللہ، اور یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. و اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا. و ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا. و الحج، حج ادا کرنا. و صوم رمضان، اور رمضان کے مہینوں کے روزے رکھنا. یہ پانچ بیسک عبادات ہیں جو فرائض کی کیٹیگری میں آپ پر اور مجھ پر فرض کر دی گئی ہیں. جو انسان بالغ ہو جاتا ہے، جو اپنی پیوبرٹی کو ٹچ کر لیتا ہے، اس پر یہ پانچ عبادات فرض ہو جاتی ہیں. حج کی عبادت اس پر اس وقت فرض ہوتی ہے جب وہ اتنا صاحب استطاعت ہو کہ اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے وہ پروویژن چھوڑ کر جا سکے. تو ہم پانچ عبادات میں سے آج رمضان کے روزوں پر بات کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بات ہمیں ذہن میں رہنی چاہیے کہ انہی پانچ بیسک عبادات کے اوپر اسلام کی فاؤنڈیشن بنتی ہے، اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. اسلامی کیلنڈر کے اندر رمضان نائنتھ منتھ آتا ہے، نواں مہینہ آتا ہے، اور ہم اسی رمضان کے بارے میں آج کل اپنے آس پاس لیکچرز بھی سن رہے ہیں، ہم لوگ آڈیوز بھی سن رہے ہیں، ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ آئے تو اس سے پہلے ہم کیا کیا تیاری کر کے رکھیں. اب آپ نے اور میں نے اس کے ساتھ اپنا ایک تعلق ڈیولپ کرنا ہے. رمضان کا مہینہ اصل میں مسلمانوں کے لیے یوں سمجھ لیں کہ ایک ری سٹارٹ کرنے کا مہینہ ہوتا ہے. آپ کے کمپیوٹر میں کچھ اپ ڈیٹس ہوتی ہیں، اس کے بعد آپ کا کمپیوٹر آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ اس کو ری سٹارٹ کریں گے تاکہ اس کی کانفیگوریشن پراپر ہو جائے، جو اس نے اپ ڈیٹس کی ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر چلی جائیں. رمضان کا مہینہ ایک طرح سے اپنے ایمان کو دوبارہ سے شروع کرنے کا، اپنے ایمان کو ریجوینیٹ کرنے کا، یا اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو ری اسٹیبلش کرنے کا مہینہ ہے. اور ہم ذرا تھوڑا سا ہی غور کریں تو ہمیں یہ حقیقت پتہ چل جاتی ہے کہ جتنی عبادات ہم آسانی سے سم ہاؤ رمضان کے مہینے میں کر لیتے ہیں، باقی پورا سال ہم نہیں کر پاتے، کوشش کے باوجود نہیں کر پاتے. تو ہم نے اس رمضان میں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنا ایک تعلق ڈیولپ کریں. اب آپ میں سے ایک ایک اس بات کو اگر سوچے، آپ میں سے کتنے لوگ اس بات کو وٹنس کریں گے کہ ہمارے ساتھ جو لوگ پچھلے رمضان میں موجود تھے ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو اس رمضان ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے. ہم میں سے ہر ایک کے خاندان میں کسی نہ کسی کا انتقال ہوا ہوگا، آپ کے جاننے والوں میں کسی دوست کا ہوا ہوگا، کسی دوست احباب کا ہوا ہوگا. ہم جانتے ہیں کہ کچھ لوگ جو پچھلے سال رمضان کی نعمت سے فائدہ اٹھا چکے، اس سال وہ دنیا میں موجود نہیں. اللہ مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک اور موقع دے رہا ہے کہ آپ اور میں رمضان میں داخل ہوں اور رمضان سے میکسیمم فائدہ اٹھائیں اور اپنے اور اللہ کے تعلق کو دوبارہ سے ری اسٹیبلش کریں. اب مجھے اور آپ کو اس رمضان سے میکسیمم کیسے فائدہ اٹھانا ہے، اس کے لیے مجھے اور آپ کو ابھی سے اس کے بارے میں سوچنا ہوگا. دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، موسٹ پروبیبلی یا اگلی جمعہ رات کو یا جمعے کو، زیادہ چانسز یہ ہیں کہ جمعے کے دن پہلا روزہ ہوگا. تو ہمارے پاس 7 سے 8 دن ہیں رمضان آنے میں، اٹ از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر. آپ یہ بتائیں، ہم میں سے ہر ایک کی رمضان کو سوچ کر مکسڈ فیلنگس ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کسی کو خیال آئے کہ رمضان آنے والا ہے تو میں تو بہت بے چینی سے رمضان کا انتظار کر رہی ہوں. ہو سکتا ہے کسی کو خیال آئے، فوراً جیسے ہی روزوں کا خیال آئے اور رمضان کا خیال آئے، فوراً اس کو کیا یاد آئے، اوہ جون کا مہینہ اور گرمی اور کراچی کی ہیومیڈیٹی، اور کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی علاقے میں لائٹ جہاں جاتی ہے وہاں کے لوگوں کے پاس اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں سوچنے کے. آپ اور میں تو ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں اللہ کی رحمت سے بجلی نہیں جاتی ہے، اور اگر جاتی بھی ہے تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں دی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ لائٹ کب گئی اور کب آ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف انسانوں کی مختلف فیلنگز رکھی ہوتی ہیں. کچھ لوگ ہو سکتا ہے چاند کو دیکھتے ساتھ ہی جو ان کو پہلا خیال آتا ہو وہ یہ آتا ہو، اوہ لمبی تراویح پڑھنی پڑے گی یا لمبی عشاء کی نماز پڑھنی پڑے گی، یا کوئی بچہ جو ہے جو ٹین ایج ہے उसको फौरन ख्याल आए, अब सुबह सुबह अम्मा की जो है डांट सुननी पड़ेगी, इसलिए कि सहरी में कुछ खाने का दिल नहीं करेगा और अम्मी जबरदस्ती कुछ ना कुछ खिलाएंगी। तो मुख्तलिफ लोगों की रमजान के आने के बारे में मुख्तलिफ फीलिंग्स होते हैं। अगर आप इन फीलिंग्स को थोड़ी देर के लिए रिजेंबल करें किसी मेहमान के साथ, रमजान को ब्लेसिड गेस्ट कहते हैं ना, वो मेहमान जो आने वाला है, जो सबके लिए मुबारक होता है, रमजान की और मेहमान की बहुत सी मुनासिबत है, बहुत सी आपस में आपको चीजें मिलती जुलती रमजान और मेहमान की मिलती हैं। देखिए, मेहमान दो तरह के होते हैं। एक मेहमान वो होता है जिसके आने पर हम खुश हो रहे होते हैं, हम सब अग्री हैं इस बात से। एक मेहमान वो होता है जिसके आने पर हम सबर कर रहे होते हैं, है ना? अगर मैं और आसान अल्फाज में कहूँ, मजाक है, बहरहाल हकीकत नहीं है। एक होता है मैके का मेहमान और दूसरा कौन होता है? ससुराल का मेहमान। मजाक की बात है, बहरहाल एनी हाउ। तो मेहमान मुख्तलिफ तरह के होते हैं। कुछ मेहमानों के आने पर हम खुश हो रहे होते हैं, कुछ के आने पर हम सब्र कर रहे होते हैं। रमजान भी ऐसा मेहमान है, अब जिसकी तैयारी बताएगी, मेरा अपना एटीट्यूड बताएगा, मेरी इस रमजान के बारे में सोच बताएगी कि मैं इस रमजान को ऐसा मेहमान बनाती हूँ जिसका मैं खुशी से इस्तकबाल करने के लिए तैयार हूँ, या मैं बस सब्र करके इस मेहमान को एंटरटेन करती हूँ। अब ये मेरी आपकी आदतें, एटीट्यूड और रवैया और उसकी तैयारी इस चीज़ को डिसाइड करेगा कि हमने रमज़ान को मैके का मेहमान बनाकर रखा हुआ है या ससुराल का मेहमान। आप देखें, जब चांद देखना होता है, कुछ लोगों को चांद देखने की बहुत एक्साइटमेंट होती है कि चांद देखना है। हम पूरे साल किसी महीने का चांद इतने एहतमाम के साथ नहीं देखते जितने एहतमाम के साथ हम रमज़ान का चांद देखते हैं। उसमें भी सब लोग इतने एहतमाम नहीं करते कि सब चांद देखने के लिए अपनी अपनी छतों पर पहुंच गए या बाग में बाहर निकल आए, कुछ लोग करते हैं। अब इमेजिन करें, जिस इंसान को बेचैनी से रमज़ान का इंतज़ार होगा, वो यकीनन रमज़ान का चांद देखने के लिए बाहर निकलेगा, खिड़की से बाहर झांकेगा, छत पर जाएगा, गार्डन में आएगा, कुछ ना कुछ कोशिश करेगा। इसको आप अगर एक मिसाल से समझें, समझें कि आप अपने वालिद से 1 साल से नहीं मिले और आपको पता चलता है कि आपके वालिद जो हैं वो फलां डेट पर आ रहे हैं। जैसे ही आपको एयरपोर्ट पर दूर से अपने वालिद नज़र आते हैं, आपकी खुशी बढ़ जाती है, एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, या आप बिल्कुल फ्लैट मूड में होते हैं? एक्साइटमेंट आपकी बढ़ जाती है अगर आपने अपने वालिद को 1 साल से, 2 साल से, 4 साल से नहीं देखा, तो जब आप देखती हैं तो आपकी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, इसलिए कि आप उनका बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी। यही कैफियत रमज़ान का चांद देखकर कुछ मुसलमानों की होती है कि जो बहुत बेचैनी से रमज़ान का इंतज़ार कर रहे होते हैं, जब वो चांद देखते हैं तो उनको एक्साइटमेंट इतनी होती है कि अब मैं ये करूँगी, ये करूँगी, ये करूँगी, अल्लाह को ऐसे खुश करूँगी, ऐसे नेकियाँ करूँगी, ऐसे कुरान से ताल्लुक़ कायम करूँगी, कि उनको चांद देखते साथ एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है। फिर आप मेहमान के साथ इसकी इस तरह से रिलेटिविटी देख सकती हैं। देखें, मेहमान आने वाले हों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी तैयारी नहीं होती, तो हम कहते हैं कि जिन मेहमानों ने कल आना है, अल्लाह करे वो परसों आए, ऐसा होता है। और जब हमारी तैयारी पूरी हो जाती है, मिसाल के तौर पर आपने खाना भी तैयार कर लिया, तो आप चाहती हैं कल का आता मेहमान आज आ जाए ताकि जो फ्रेश चीज़ें हैं वो उसको सर्व आप कर सकें। तो इसी तरह से रमज़ान का मामला भी है। जब आपकी ख्वाहिश हो रही हो कि अच्छा अभी चांद नजर ना आए, अच्छा अभी चांद नजर ना आए, इसका मतलब क्या है कि अभी आपकी तैयारी नहीं है, अभी आप तैयारी कुछ करना चाह रही हैं। और जब आपने ऑलरेडी तैयारी कर ली होती है, तो फिर आप बेचैनी से इंतज़ार कर रही होती हैं कि मुझे कल का नज़र आता चांद आज नज़र आ जाए। तो ये रमज़ान की मुख्तलिफ रिजेंबलेंस है जो मेहमान के साथ आती है। एक और रिजेंबलेंस रमज़ान की मेहमान के साथ आती है, हमारे कल्चर में है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, गुनाह सवाब की बात नहीं है, लेकिन हमारे कल्चर में एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंट है ज़्यादातर ख़ानदानों के अंदर, कि जब मेहमान आता है तो तोहफ़ा लेकर आता है, और जब मेहमान जा रहा होता है तो हम उसको तोहफ़ा देते हैं। ऐसे ही ज़्यादातर होता है। मिसाल के तौर पर आपकी नंद आई बाहर से, तो वो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए तोहफे लेकर आती हैं। फिर जब वो वापस जा रही होती हैं तो हम क्या करते हैं? हम उनको तोहफे दे रहे होते हैं। ये एक हमारी रिवायत है, हमारा कस्टम है, इस्लाम का इससे ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। अब आप देखें, जब रमज़ान आता है, रमज़ान ऐसा मेहमान है जो जब आता है तो तोहफा लेकर आता है, और जो जब जाता है तो तोहफे दे कर जाता है। आता है तो कौन सा तोहफा लेकर आता है? जब रमज़ान आता है तो हम जानते हैं कि रमज़ान में नेकियों का अजर 70 टाइम्स बढ़ा दिया जाता है, या कई गुना बढ़ा दिया जाता है। जब रमजान आता है तो आपकी एक नेकी का अजर आपको कई गुना बढ़ा कर दिया जाता है, आपके सदके का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है, आपकी सुन्नतों को फराइज के बराबर कर दिया जाता है और फराइज को 70 टाइम्स बढ़ा दिया जाता है। तो ये रमजान का तोहफा है कि जब रमजान आता है तो हमारे लिए इस तरह से नेकियों के अजर के तोहफे लेकर आता है। अब जब रमजान जाता है तो क्या करता है? जब रमजान जाता है तो भी हमें एक तोहफा देकर जाता है। फर्क सिर्फ ये होता है कि उस तोहफे को रिसीव करने के लिए आप और मैं तैयार भी हैं कि नहीं हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने जितनी भी मखलूकात बनाई हैं, इन तमाम मखलूकात का कोई ना कोई मकसद है, छोटी मखलूक हो या जाइंट मखलूक हो, एक छोटा सा रेत का जर्रा हो या गैलेक्सी हो, हर मखलूक का कोई ना कोई मकसद अल्लाह ताला ने रखा है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने इंसानों के बनाने का मकसद भी रखा, और अल्लाह ताला ने सूरह अद्दारियात आयत नंबर 56 में इस मकसद को बयान कर दिया, जब अल्लाह ताला ने कहा वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदूनी। अल्लाह ताला ने कहा मैंने नहीं पैदा किया जिनों को और इंसानों को, लेकिन किस लिए? सिर्फ इसलिए कि वो मेरी बंदगी करें, वो मेरी इबादत करें। तो आपकी और मेरी तख्लीक का मकसद कुछ हो गया कि नहीं हो गया? क्या मकसद हो गया? इबादत करना। इसी तरह से अल्लाह ताला ने ये जो मुझे और आपको 5 पिलर्स दिए हैं, जिसकी हमने बिल्कुल शुरू में बुखारी की रिवायत से बात की थी, बुनी अल इस्लाम अला खमसिन, हर इबादत का भी एक मकसद है। रोजे का अलग मकसद होगा, नमाज पढ़ने का अलग मकसद होगा, हज करने का अलग मकसद होगा, जकात अदा करने का अलग मकसद होगा। तो रोजे का मकसद अल्लाह ताला ने आपको और मुझे दिया है। जब ये रमजान आएंगे हम रोजा रखेंगे और हम पूरे ईमान और एहतसाब के साथ रोजा रखेंगे, तो अल्लाह ताला मुझे और आपको उसका एक इनाम देते हैं, और वो इनाम सूरत बकरा की आयत नंबर 183 के एंड पर अल्लाह ताला ने फरमाया है। सूरह बकरा का एक रुकू है आयत नंबर 183 से लेकर आयत नंबर 187 तक, जहां पर पूरे कुरान में वाहिद मुकाम है जहां पर रमजान के रोजों के अहकामात, रमजान के रोजों का मकसद, रमजान के रोजों का फिक्र सब बयान कर दिया गया है। आपको बाकी पूरे कुरान में रोजों के मुतालिक, रमजान के रोजों के मुतालिक कोई आयत नहीं मिलती। ये एक वाहिद मुकाम है जिसको समझा जाता है कि बहुत कंसाइज अहकामात और फिक्र यहाँ पर रोजों का बयान हो गया है, बाकी डिटेल आपको अहादीस से मिल जाती है। तो जब हम कह रहे हैं कि सिर्फ इन आयात में कुरान की रमजान के रोजों का जिक्र आता है, तो अल्लाह ताला ने मकसद भी इस रमजान की इबादत का इन्हीं आयात में दे दिया। सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में आता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सयाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे। क्या कहा गया आगे? लअल्लकुम तत्तकून, हो सकता है कि तुम तकवा इख्तियार कर लो। यहाँ पर अल्फाज आए हैं लअल्लकुम के। अरबी जुबान में लअल्ला इस्तेमाल होता है जिसको दो मानी में लिया जाता है। एक इसका मानी ये लिया जाता है, मिसाल के तौर पर एक बादशाह है, ठीक है, या किसी एरिया का कोई फ्यूडल लॉर्ड है, उसके काम करने वाले कोई मजदूर हैं, लेबर हैं। मजदूर कहता है बादशाह से कि आप मेरा जो मैंने आपको टैक्स देना है उसमें कुछ टाइम एक्सटेंशन दे दें, मैं अभी आपको पे नहीं कर सकता। तो बादशाह कहता है कि अच्छा ठीक है, हम तुम्हें थोड़ा टाइम बार दे देते हैं। और एक अंदाज बादशाह का फौरन ये होता है कि बादशाह कहता है कि हो सकता है हम तुम्हारा टैक्स माफी कर दें। तो जब मजदूर या लेबर ये सुनता है कि बादशाह कह रहा है कि हो सकता है हम तुम्हारा टैक्स माफी कर दें, तो क्या उसको कुछ ना कुछ श्योरिटी मिलती है कि नहीं मिलती कि हो सकता है, चांसेस ये हैं कि बादशाह मुझसे टैक्स ही ना ले? इसलिए कि बादशाह का कहना और किसी मजदूर का कहना, इन दोनों की सेइंग में बड़ा फर्क होता है। तो स्कॉलर्स कहते हैं कि जब अल्लाह ताला ने रमजान के रोजों का मकसद रखा लअल्लकुम तत्तकून, इसका मतलब है अल्लाह कह रहा है शायद कि तुम तकवा हासिल कर लो, तो चांसेस हैं कि अल्लाह के बंदे तकवा में से कुछ परसेंटेज हासिल कर लेंगे। दूसरा इसका मफहूम स्कॉलर्स ये करते हैं लअल्लकुम का, वो कहते हैं कि अल्लाह ने यहाँ कहा हो सकता है कि तुम तकवा हासिल कर लो, इसका मतलब है कि यहाँ श्योरिटी नहीं दी गई, ली तत्तकू नहीं आया ताकि तुम तकवा हासिल कर लो, ये नहीं कहा, बल्कि कहा लअल्लकुम, हो सकता है। और हम जानते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत का मफहूम आता है कि कितने ही रोज़ादार ऐसे हैं जिनको भूख और प्यास और थकन के अलावा इस रमज़ान के महीने में कुछ नहीं मिलता। अल्लाह ना करे कि हम उन मुसलमानों में शामिल हों। तो रमज़ान के रोज़ों का एक मकसद सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में दिया गया, और वो मकसद क्या है? हम रोज़े से क्या हासिल करें? तकवा हासिल करें। इस तकवा को हम हासिल करें। अब हमने कॉन्शियस होकर अगर रमज़ान गुजारा तो उम्मीद है और चांसेस हैं कि आप और मैं तकवा की नेमत हासिल कर लेंगे। रमज़ान में बहुत सी दुआएं मांगने की आपकी और मेरी लिस्ट में शामिल होनी चाहिए। दुआओं की किताब कोई ना कोई आपकी फोर्ट्रेस ऑफ द मुस्लिम है, या कोई भी दुआओं की किताब जो आप हैंडी रख सकती हैं उसको हैंडी रखें। एक अपने बैग में डालें अगर आप फ्रीक्वेंटली घर से बाहर आना जाना कर रही हैं, और एक आपकी नमाज पढ़ने की जगह पर होनी चाहिए। नमाज के अलावा दुआएं पढ़ने का एहतमाम आपने और मैंने करना है। अपनी दुआओं की लिस्ट में एक ये दुआ शामिल कर लीजिए। सही नरेशन से, सही रिवायत से, अबू सलमा से ये रिवायत मिलती है, इब्ने माजा के अंदर आती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ हमें सिखाई कि कैसे दुआ मांगो। अल्लाहुम्मा, ए हमारे अल्लाह, इन्नी, यकीनन मैं, अस आलूका, मैं आपसे सवाल करती हूँ, मैं आपसे मांगती हूँ, किस चीज़ को? इल्मन नाफियन। कौन सा इल्म मांगती हूँ मैं आपसे? नाफे इल्म। और क्या मांगती हूँ? व रिज़्क़न तय्यिबा, मैं आपसे पाकीज़ा तय्यब रिस्क मांगती हूँ। और तीसरी चीज़ क्या मांगनी है आपने और मैंने? व अमलन मुतकब्बला, और ऐसा अमल जो कबूल हो जाए। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इस दुआ के अंदर हमारे एक एक लम्हे का अमल आ जाता है रमज़ान के महीने का। तो आपने कॉन्शियस होकर इस दुआ को अपने रमज़ान में शामिल करना है। पहली चीज़ मांगी गई इल्मे नाफे। इल्मे नाफे का मतलब क्या है? अल्लाह हमें ऐसा इल्म दे जो इल्म मेरे और आपके लिए रोशनी का बायस बने, जो सही और गलत में पहचान करा सके, जो मुझे बता सके कि कहाँ मैं सही अमल कर रही हूँ और कहाँ मैं गलत अमल कर रही हूँ। देखिए, यहाँ पर सिर्फ इल्म नहीं मांगा गया, अस आलू का इल्म नहीं आया, बल्कि इल्म के साथ भी कौन सा इल्म चाहिए? नाफे इल्म चाहिए। वरना वीडियो बनाना, मूवी बनाना, थिएटर में काम करना, कोई मूवी का सॉन्ग बना देना, कोई अपनी ऑडियो एल्बम बना लेना, क्या ये इल्म नहीं है? ये भी तो इल्म है। हम कौन सा इल्म मांग रहे हैं? हम नाफे इल्म मांग रहे हैं। नाफे अरबी जुबान में नाफिउन जो है वो फाइलुन के वजन पर आता है। नाफे इल्म अरबी जुबान में वो इल्म होता है जो ना सिर्फ मुझे फायदा दे बल्कि औरों को भी फायदा दे। अल्लाह इस रमजान मुझे ऐसा इल्म हासिल करने की तौफीक दे जो इल्म ना सिर्फ मुझे फायदा दे बल्कि मेरी फैमिली को मेरे जरिए फायदा दे, मेरे दोस्तों को मेरे जरिए फायदा दे, मेरे मिलने वालों को मेरे जरिए फायदा दे। अल्लाह मुझे ऐसा नाफे इल्म दे जो रमज़ान ने भी मुझे फ़ायदा दे और रमज़ान के बाद भी मुझे फ़ायदा दे। नाफे इल्म ऐसा इल्म है जो मेरी और आपकी ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद हो जाए। नाफे इल्म वो इल्म है जो मेरी और आपकी आखिरत को भी संवार दे। तो आपने और मैंने इस रमज़ान इंशाल्लाह नाफे इल्म हासिल करने की कोशिश करनी है। और सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और सबसे हाईएस्ट लिटरेचर इल्म का नाफे जो है वो दुनिया में कौन सा है? कुरान। तो मैक्सिमम आपने और मैंने इस रमज़ान के महीने में कुरान से जुड़ना है। तो एक तो आपका और मेरा सवाल होना चाहिए अल्लाह से नाफे इल्म का, और सवाल करने के बाद आपने और मैंने अल्लाह से दुआ करते रहना है, कोशिश करनी है और फिर अपना अमल आगे बढ़ाना है। दूसरी चीज़ जिसका दुआ में जिक्र किया गया वो है रिस्क तैयब। तैयब लफ्ज़ जो अरबी ज़ुबान में आता है इसमें दो फैक्टर्स आ जाते हैं। एक होता है तैयब हलाल रिस्क, अल्लाह हमें हलाल रिस्क दे। और दूसरा तैयब के अंदर मफहूम आता है, मीनिंग्स आते हैं खैर के, खैर वाला रिस्क दे अल्लाह हमें। यानी हम जो खाएं वो हलाल भी हो और जो हमें फ़ायदा भी दे। और हम जानते हैं कि रिस्क के अंदर क्या सिर्फ खाना पीना आता है? क्या सिर्फ मेरा और आपका खुराक खाना ये रिस्क में आता है, या बहुत ब्रॉड टर्म है रिस्क? रिस्क के अंदर आपकी और मेरे रिश्ते, आपकी और मेरी सलाहियतें, आपका और मेरा वक्त, आपकी और मेरी औलाद, आपके और मेरे माल, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं अल्लाह हमें ऐसा रिस्क दे जो हलाल हो और खैर वाला हो। अल्लाह जहाँ से माल कमाया जाए वो भी हलाल हो, जहाँ खर्च किया जाए वो भी हलाल हो। जो माल मैं अपने बैंक बैलेंस में जमा करूँ वो भी हलाल हो, ताकि मेरी औलाद जब खाए तो उस तक भी हलाल का नवाला पहुँचे। जहाँ से मैं शॉपिंग करूँ और जहाँ मैं शॉपिंग करूँ और जिस जगह मैं खर्च करूँ, हलाल अंदाज में खर्च करूँ। इसी तरह से अगर आप इसको खाने पीने पर ले आएं, तो जिस तरह रमज़ान के महीने के डूज़ एंड डोंट्स का आपको और मुझे इल्म होना चाहिए, ऐसे ही आपको और मुझे पता होना चाहिए कि कौन सी खुराक रमज़ान के महीने में आपको और मुझे फ़ायदा दे सकती है। इसलिए कि आप और मैं जानते हैं, नंबर एक, अगर हम हराम निवाले की बात करें तो अहादीस से पता चलता है कि हराम निवाला खाना, खुद खाना या अपनी औलाद को खिलाना, ये बहुत सी इंसान के लिए आफतों का बायस बनता है। इंसान के अमले सौले करने में रुकावट बनता है, इंसान के इल्म हासिल करने में रुकावट बनता है, और हराम खाना इंसान की दुआओं की कबूलियत के रास्ते में रुकावट बन जाता है। तो अपने माल को हलाल करना है। अगर आपके घर में किसी भी फॉर्म में कोई भी शक्ल हराम की आ रही है, इंटरेस्ट की आ रही है, इस रमज़ान अल्लाह से टूट कर दुआ करें, अल्लाह हमारे रिस्क को हलाल कर दे, अल्लाह हमारे रिस्क को खैर वाला कर दे, अल्लाह हमारे रिस्क को तैयब कर दे, ठीक है? और मैंने और आपने अपनी बाकी रिस्क के अंदर भी अल्लाह से इसी खैर की उम्मीद रखनी है। तो रोज़ों के अंदर ऐसा खाएं जिससे आपको सेहत मिले, ऐसा खाएं जिससे आपको ताकत मिले, कुव्वत मिले, ऐसा खाएं जिससे आपको इबादत करने में आसानी हो जाए। और इसके लिए कॉन्शियस होना ज़रूरी है। बहुत सारा खा लिया और वो जो हम लोगों को एक ईटिंग सिंड्रोम हो जाता है रमज़ान के महीने में, खाना अच्छा है लेकिन याद रखें जितना खाएंगे उतनी नींद आएगी। आप रमज़ान के महीने में अपना खाना जो है वो बैलेंस्ड करके देखिए। आप बैलेंस्ड करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी नींद भी कम हो जाएगी और आपको अपने ऊपर कंट्रोल भी अच्छा आ जाएगा। और इसके लिए बहुत से आपको ब्लॉग्स मिल जाते हैं, बहुत सी किताबें मिल जाती हैं, आजकल बहुत अवेयरनेस आ गई है। रिस्क तैयब खाने की खास कोशिश कीजिए ताकि आपकी और मेरी इबादत मैक्सिमम हो सके। फिर जो अगली चीज़ आपकी और मेरे लिए ज़रूरी है, आपने एक किताब का नाम सुना होगा, फ़िक्हुल क़ुलूब, सुना है? फ़िक्हुल क़ुलूब मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन अब्दुल्ला की किताब है, जिसमें दिल के मामलात के बारे में काफ़ी तफसील से बात की गई है। वो कहते हैं, इल्म क्या है? अल इल्मु ग़िज़ाउल उक़ूल, अक़ल की ग़िज़ा क्या है? इल्म। फिर वो कहते हैं, वर रिस्क ग़िज़ाउल बुतून, पेट की ग़िज़ा क्या है? रिस्क, जो हम खाते हैं। वर ज़िक्रु ग़िज़ाउल उक़ूल, और दिलों की ग़िज़ा क्या है? ज़िक्र। तो अल्लाह करे कि इस रमज़ान आप और मैं अपनी अक़ल को भी खैर वाला रिस्क दे सकें, अपने दिलों को भी खैर वाला रिस्क दे सकें, और अपने पेटों को भी खैर वाला रिस्क दे सकें, ताकि आप और मैं मैक्सिमम इस रमज़ान से फ़ायदा उठा सकें। तीसरी चीज़, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मांगी थी दुआ के अंदर? अमलन मुतकब्बलन, अल्लाह मेरे हर अमल को कबूल कर ले। देखें, अमल बहुत लोग करते हैं लेकिन कबूलियत सबको नहीं मिलती। अम्मा पारा में, जो 30th पारा है कुरान का, उसमें एक सूरत में आयत आती है जिसमें आते हैं अल्फाज आमिलतुन नासिबा, अमल करने वाले और थकने वाले। बज़ाहिर दुनिया में बहुत अमल कर रहे थे, बहुत नेकियां करने वाले थे, लेकिन जब अल्लाह के हाथ पहुंचे तो उनकी नेकियां राख बनाकर उड़ा दी गईं, उनके किसी गुनाह की वजह से, उनकी किसी गलती की वजह से। अल्लाह हमें आमिलातुन नासिबा में ना शामिल फरमाए। अल्लाह हम खैर वाला अमल करें, और हम जो अमल करें उसके पीछे रीज़न भी हमारी दुरुस्त हो, हम राइट रीज़न के लिए अमल करें, हमारी नीयत खालिस हो। तो स्कॉलर्स कहते हैं कि अमल की कबूलियत के लिए दो चीज़ें याद रखें, एक आपकी नीयत का खुलूस, आपका लेवल ऑफ इखलास होना बहुत ज़रूरी है। वल्कल्बु मुतवज्जहुन इलल्लाह, आपका दिल हर काम को करते हुए अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहे। इस वक्त हम यहाँ बैठे हैं, हम सब एक दूसरे को देख भी रहे हैं, आप मुझे सुन रही हैं, मैं आपको सुना रही हूँ। हमारा इस वक्त यहाँ बैठना, सीखना, सिखाना सब किसके लिए है? अल्लाह के लिए है, ताकि अल्लाह मुझे इसका अजर दे। तो पहली शर्त है अमल की कबूलियत में, वल कल्बु मुतवज्जुहुन इलल्लाह, आपका और मेरा दिल अल्लाह की तरफ पूरी मुतवज्जो के साथ, पूरी अटेंशन के साथ महव हो। दूसरी चीज़ स्कॉलर्स कहते हैं अमल की कबूलियत के लिए है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। रमज़ान में आप और मैं रोज़े जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक रखेंगे, سحری اور افطار کے اوقات میں سنت کے مطابق احتیاط رکھیں گے، اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کا اور میرا رمضان قبولیت والا رمضان ہو جائے گا۔ تو آپ نے اور میں نے اس رمضان اس دعا کو کانشیس ہو کر اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے انشاءاللہ۔ چھوٹی سی دعا ہے، اللہم انی اسألوکا علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ ہمیں نافع علم دے، اللہ ہمیں طیب رزق دے، اور اللہ ہمارے ہر عمل کو قبول فرما لے جو آلریڈی قبول ہو گیا، متقبلا، جس کو اللہ آلریڈی قبول کر چکا۔ اب آپ نے ایک دعا سیکھ لی اور آپ نے ایک چیز سیکھی، روزوں کا مقصد کیا سیکھا تھا؟ میں بھول گئی، لعلکم تتقون، شاباش، یہ کیا ہے؟ روزوں کا مقصد۔ دوسری چیز آپ نے سیکھی کہ آپ نے اپنی دعاؤں میں ابن ماجہ کی اس دعا کو شامل کرنا ہے۔ اب تیسری چیز آپ نے اپنے ذہن میں جو رکھنی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے رمضان کے ہر دن کو، ہر گھنٹے کو پروڈکٹیو بنا سکتی ہے، اور وہ چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی ایک روایت جو آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے گارنٹی دی ہے کہ اگر آپ نے اور میں نے کانشیس ہو کر رمضان گزارا تو آپ کی اور میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان، جس کسی نے رمضان میں روزہ رکھا، اس وقت رمضان کے روزے کی اسپیسیفک بات ہو رہی ہے، اس وقت آپ نفلی روزوں کی بات نہیں کر رہے، محرم کے روزوں کی بات نہیں کر رہے، ذی الحج کے روزوں کی بات نہیں کر رہے۔ من صام رمضان، جس نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا، کس طرح؟ ایمانن، حالت ایمان میں، و احتسابن، اور اپنا سیلف ایویلیویشن کرتے ہوئے، تو کیا ہوتا ہے؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم سب اس روایت کو سنتے ہیں، ہم میں سے اکثر نے یہ حدیث اپنے فیس بک پیجز پر پڑھی ہوگی، ہو سکتا ہے ہم نے واٹس ایپ بھی خوب کی ہو، اور ہو سکتا ہے ہم میں سے اکثر کو یاد بھی ہو، لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اس حدیث کے شروع کے حصے کو یاد رکھتے ہیں اور آخری حصے کو یاد رکھتے ہیں۔ من صام رمضان، جس کسی نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ہم بھول کیا جاتے ہیں؟ ایمان اور احتساب، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ پچھلے گناہ معاف کیے جائیں گے اس کنڈیشن کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آتی ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ جو صحابہ آپ کے آس پاس موجود تھے، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے آمین کس بات پر کہا؟ اللہ کے رسول نے ان کو بتایا کہ جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے 3 لوگوں کے خلاف دعا کی ہے، 3 لوگوں کے حق میں نہیں، 3 لوگوں کے خلاف دعا کی ہے، اور میں نے ان 3 دعاؤں کے بعد آمین کہا ہے۔ اب آپ سوچیں، دعا کس نے کی؟ سب سے بہترین فرشتے جبرائیل علیہ السلام نے، اور آمین کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ان 3 کیٹیگریز میں سے ایک کیٹیگری وہ ہے جس نے رمضان کے روزے پائے اور اس نے اپنی بخشش نہیں کروائی، یعنی وہ اپنے پچھلے گناہوں کو معاف نہیں کروا سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آمین کہا۔ عربی زبان میں جو الفاظ آتے ہیں وہ آتے ہیں راغم عنفو، یعنی اس انسان کو ہیومیلیٹ کیا جائے، اس انسان کی ناک گرد آلود ہو۔ ہم اپنی ناکوں کی کتنی حفاظت کرتے ہیں، کتنا سیدھا رکھتے ہیں، اس لیے کہ ناک ہماری پرائیڈ ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ آتے ہیں راغم عنفو، اس کا ناک گرد آلود ہو جائے، وہ انسان ہیومیلیٹ ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے آمین کہا، اللہ نہ کرے کہ ہم اس کیٹیگری کے اندر شامل ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس رمضان میں اس مقصد کو سمجھ سکیں جس مقصد کے لیے آپ پر اور مجھ پر رمضان کا مہینہ سایہ فگن ہوتا ہے۔ اللہ کسی مقصد کے لیے اس مہینے کو بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں آپ کو اور مجھے اپنی پہچان کرائی ہے، میں ہوں کون اصل میں؟ میرا جسم صرف اور صرف میری ضرورت کا طالب ہے، یا کوئی اور کمپوننٹ، کوئی اور ایلیمنٹ بھی ہے جس کو میری توجہ درکار ہے؟ ایک انسان 2 کمپوننٹ سے بنتا ہے، ایک ہے اس کا فزیکل بینگ اور دوسرا ہے اس کا اسپریچول بینگ۔ ہم جتنے ایڈورٹیزمنٹ دیکھتے ہیں، ہم جتنا ایڈ دیکھتے ہیں، ہم جتنا کمرشل دیکھتے ہیں، ہم جتنے بل بورڈ دیکھتے ہیں، فیل گڈ، لک گڈ، लुक ब्यूटीफुल, ये सब किसकी बात हो रही होती है, आपकी और मेरे जिस्म की या आपकी और मेरी रूह की? जिस्म की बात हो रही होती है। जो बाकी 11 महीने हम अपनी रूह को निग्लेक्ट करके रखते हैं, इस एक महीने में उस रूह को दोबारा से जिंदा करने का मौका मिलता है। और ये उसी वक्त होगा जब आप और मैं ईमान और एहतसाब के साथ रोजे गुजारेंगे, ईमान और एहतसाब के साथ कॉन्शियस होकर तकवा हासिल करेंगे। ये सिर्फ मैं और आप अपने आइडेंटिटी क्राइसिस को उसी वक्त सॉल्व कर सकते हैं, वरना जिस तरह से रमजान में दाखिल हुए थे उसी गफलत के साथ रमजान से निकल जाएंगे, और फिर से दोबारा से आपको और मुझे डिप्रेशन होने लग जाएगा कि उफ ये रमजान अच्छा नहीं गुजरा, अगला रमजान आएगा तो मैं ये भी करूंगी, मैं ये भी करूंगी और मैं ये भी करूंगी। हम में से अक्सरियत को, बल्कि मेरा ख्याल है हम में से 99.999% को यही फील होता है हर रमजान के 27वें, 28वें, 29वें रोजे में कि मैंने वैसा रमजान नहीं गुजारा जैसा मैं गुजार सकती थी, मैंने वैसी नेकियां नहीं की जैसी मैं कर सकती थी, मैंने वैसा सदका नहीं किया जैसा मैं कर सकती थी, मैंने वैसा कुरान के साथ वक्त नहीं गुजारा जैसा मैं गुजार सकती थी। तो बेहतर है कि अभी इस रमजान के महीने को हम अपने लिए फायदेमंद बनाएं, मैक्सिमम हम इससे फायदा उठाने की कोशिश करें, अपनी रूह को जगाएं, वो रूह जिसको 11 महीने हम निग्लेक्ट करके पैरालाइज्ड कर देते हैं, अंधा बहरा गूंगा कर देते हैं, जो कोमे में चली जाती है, उस रूह को जिंदा करने का, उसको खुराक देने का, उसको जगाने का, उसको रीजुविनेट करने का ये बेहतरीन महीना है। और ये काम हम इन दो चीजों के साथ कर सकते हैं, ईमान के साथ और एहतिसाब के साथ। अगर ये दो टर्मिनोलॉजीज मुझे और आपको अपने रमजान में याद रह गई तो इंशाल्लाह आपका और मेरा रमजान प्रोडक्टिव गुजरेगा। आपने और मैंने अब यही कोशिश करनी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इतनी गहरी बात की है कि इसके ऊपर गारंटी दे दी कि उसके पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं, आखिर क्या चीज़ है ईमान और एहतसाब? कैसे मैं रीस्टार्ट करूं ईमान का, कैसे मैं जिंदा करूं अपने ईमान को? आप ईमान की ब्रांचेस जानते हैं, ईमान के कई एस्पेक्ट्स आते हैं, ईमान बिल्ला अल्लाह पर ईमान, ईमान बिल मलाइका किस पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, ईमान बिल कुतुब किस पर ईमान, किताबों पर ईमान, जितनी किताबें अल्लाह ताला ने आसमानी किताबें नाजिल फरमाई, ईमान बिल रुसुल तमाम अम्बिया पर ईमान रखना बस समेत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ईमान बिल आखिरा आखिरत के ऊपर ईमान मजबूत करना, और ईमान बिल कदर अपनी डेस्टिनी के ऊपर राजी रहना जो अल्लाह ने बनाई है। अब जब आप इन एंगल्स के साथ, इन एस्पेक्ट्स के साथ रमजान में कॉन्शियस होकर जिंदगी गुजारेंगी, रोजे रखेंगी, अपने वक्त को गुजारेंगी, तो कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला आपके पिछले गुनाहों को माफ ना करे? ईमान बिल्लाह को देखिए, रमजान में आपका और मेरा ईमान बिल्लाह कैसे मजबूत होता है। हम सिंपल एक बात क्या कि आगे चले जाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा जिसने ईमान और एहतसाब के साथ रोजे रखे, रमजान गुजारा, उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। तो प्रैक्टिकली ईमान कहाँ कहाँ आपको और मुझे महसूस होता है, कहाँ कहाँ आप और मैं इस ईमान को रिवाइव कर सकते हैं, इसको दोबारा से रीस्टैब्लिश कर सकते हैं, इसको दोबारा से आप और मैं स्ट्रेंथन कर सकते हैं? अल्लाह ताला के लिए आप और मैं रोजा रखते हैं, रखते हैं कि नहीं रखते हैं? अल्लाह ताला तमाम इबादात का अजर इंसान को दे देता है। अल्लाह ताला ने इस रमजान के इबादत के लिए कहा अस्सौमुली व अना अजजी बिही, हदीस कुदसी में आता है अल्लाह ताला ने फरमाया रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। आप देखें, स्कॉलर्स कहते हैं कि आपकी बाकी जितनी भी इबादात हैं, जो हमने 5 बेसिक इबादात की बात की थी शुरू में बिल्कुल बुखारी की नरेशन से, वो कहते हैं कि रमजान के रोजों के अलावा बाकी जितनी भी इबादात हैं उन सब में और लोगों का एलिमेंट आ जाता है। मिसाल के तौर पर किसी को मुसलमान होना है, शहादा देनी है, तो यकीनन वो किसी इंसान के सामने कलमा पढ़ेगा। आप और मैं नमाज पढ़ते हैं तो लोग आपको और मुझे नमाज पढ़ते हुए देख लेते हैं। आप और मैं ज़कात अदा करते हैं तो आपको और मुझे ज़कात किसको देनी होती है? दीवारों खिड़कियों को किसको देनी होती है? इंसानों को देनी होती है। तो इंसान का एलिमेंट, पब्लिक एलिमेंट यहाँ पर भी आ जाता है। आप और मैं हज करते हैं तो मिलियन लोगों के सामने आप और मैं हज की इबादत कर रहे होते हैं। रमज़ान का रोज़ा, कई ऐसे मौके आते हैं रोजे के दौरान जिसमें आप और मैं बिल्कुल अकेले होते हैं। दुनिया को मालूम हो सकता है कि मेरा रोज़ा है, लेकिन हो सकता है कि सिर्फ अल्लाह जानता हो कि मेरा रोज़ा है या नहीं। हो सकता है कि आप वुजू करने जाएं, आपसे मुराद आप नहीं, कोई भी इंसान, आप पर नहीं उंगली उठा रही मैं, आप वुजू करने जाएं और सख्त गर्मी और सख्त प्यास, और आपने कोशिश के बावजूद सहरी में बहुत अच्छा सा दही खाने की कोशिश की थी, लेकिन आपका दिल नहीं किया। अब आपको प्यास लग रही है और अभी सिर्फ 2 बजे हैं। आप घड़ी मुड़कर देखती हैं और कभी-कभी वो बच्चे कहते हैं कि टमी ग्राउल भी कर रही होती है, पेट बोलता है ना आपका, आपका जिस्म आपको चीख-चीख कर बताता है कि आपका रोजा है। और फिर आप उस वक्त अपने जिस्म को अपनी रूह के कंट्रोल में दे देते हैं और आप घड़ी देखकर फौरन क्या कहते हैं, नहीं अभी तो मगरिब में 3 घंटे पड़े हैं, अभी तो मगरिब में 4 घंटे पड़े हैं, अभी तो मैं रोजा नहीं खोल सकती। हम अकेले होते हैं, तन्हाई में होते हैं, लेकिन हम कुल्ली करते हुए, वुजू करते हुए एक घूंट पानी भी हलक से नहीं उतारते। इनफैक्ट अगर हमें फील हो कि ज्यादा हलक में चला गया तो हम थूक थूक कर और हलक खुश कर लेते हैं। ये है ईमान बिल्ला, अल्लाह पर ईमान आपका और मेरा ऐसा रिवाइव होता है कि तन्हाई में भी हम गुनाह करने का सोच भी नहीं सकते, खता करने का सोचते भी नहीं रमजान के महीने में। ये आपका और मेरा ईमान होता है। आप गाड़ी में अकेली जा रही हैं, आप कैसेट प्लेयर में क्या सुनती हैं, गाड़ी में कोई भी नहीं है, कौन जानता है, सिर्फ अल्लाह जानता है और आप जानती हैं। लेकिन रमजान का महीना आपको रोक लेता है कि अच्छा तुम अपनी सीडी मत लगाओ, तुम तिलावत लगा लो। आप अपने हेडफोन्स कानों में लगा के, या आपकी बेटी 18 साल की, 16 साल की, अपने एयरप्लग्स लगा कर बैठी है, आपको क्या पता वो क्या सुन रही है, रोजा रखा हुआ है उसने, कौन जानता है वो क्या सुन रही है, अल्लाह जानता है। तो ईमान बिल्लाह आपका और मेरा रमजान के महीने में रिवाइव होता है। ये ईमान बिल्लाह है कि अल्लाह मुझे हर लम्हा देख रहा है। बाकी 11 महीने ये ईमान बिल्लाह कहाँ चला जाता है? जब हम झूठ भी बोलते हैं, जब हम गीबत भी करते हैं, हमें पता होता है हम गीबत कर रहे हैं, हम धोखा भी देते हैं, हमें मालूम होता है हम धोखा दे रहे हैं, हम किसी के साथ गुस्से में उसको बुली भी कर देते हैं, हमें पता होता है कि थोड़ा ओवर हो गया, लेकिन फिर भी हम करते हैं। तो रमजान में ये ईमान बिल्ला खास मजबूत करने की जरूरत है ताकि बाकी 11 महीने में ये काम आ सके, इसका खजाना जमा हो सके। ईमान बिल मलाइका कैसे आपका और मेरा रिवाइव होता है? अल्लाह ताला ने आपको और मुझे 2 फरिश्ते तो दे दिए जो आपकी और मेरी सारे रिकॉर्ड जो हैं वो लिख रहे हैं। इसके अलावा अल्लाह ने कई फरिश्तों को आपकी और मेरे साथ, हर इंसान के साथ अटैच कर दिया। जो अमल आप और मैं करना चाहते हैं वो उसमें आपकी और मेरी मदद करते हैं। रमज़ान के महीने में हम ऐसे अमल करना चाहते हैं, बुरे से बुरा मुसलमान भी, बेयर मिनिमम पर अमल करने वाला मुसलमान भी ये जानता है कि रमज़ान के महीने में उसे कुछ अच्छे काम करने हैं, और हमें उम्मीद होती है कि हमारे ये कुछ अच्छे काम कयामत में अल्लाह के सामने प्रेजेंट होंगे, उम्मीद होती है। अल्लाह ताला ने ये बात आपको और मुझे बता दी है अपनी तालीमात के ज़रिए कि जब बंदा नेकी करना चाहता है तो अल्लाह के फरिश्ते उसकी उस नेकी में मदद करते हैं। आपने और मैंने सूरह फुस्सिलत की आयत पढ़ी है, सूरह फुस्सिलत जिसको हामी मद सजदा भी कहते हैं। हामी सजदा की आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला ने कहा, इन्नल्लज़ीन क़ालू, यकीनन जो लोग जब कहते हैं रब्बुनल्लाह, अल्लाह मेरा रब है, थुम्मा इस्तक़ामू, फिर वो उस पर जम जाते हैं। जब आपने इरादा कर लिया कि आपने नेक काम करना है और अब आप इस पर स्टेडफास्ट हो गई तो क्या होता है? ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, कौन आता है उनके ऊपर? फरिश्ते आते हैं और उनको बताते हैं, अल्ला तखाफू वला तहज़नू, मत तुम खौफजदा हो, मत तुम रंजीदा हो। ये फरिश्ता आपको और मुझे जायनमाज पर खड़ा नहीं कर देता, लेकिन ये मेरे और आपके दिल के अंदर एक अच्छा ख्याल ज़रूर डालता है, हिम्मत ज़रूर दिलाता है। सूरह क़ाफ़ अगर आप पढ़ें तो सूरह क़ाफ़ में अल्लाह ताला ने फरिश्ते को करीन कहा है। अरबी ज़ुबान में करीन का लफ्ज़ क़ाफ़ रा या नून, करीन आता है बेस्ट क्लोज फ्रेंड के लिए, बल्कि ऐसा फ्रेंड जिसके साथ आप हैंग आउट करना चाहें, जिसके साथ आप मैक्सिमम टाइम गुजारना चाहें, करीन ऐसा दोस्त होता है। अब आप और मैं खुद डिसाइड करेंगे कि मैंने और आपने फरिश्ते को क्या करीन बनाया है। सूरह कौफ के अंदर ये खूबसूरत आयात मौजूद हैं कि जहां अल्लाह ताला ने बेस्ट फ्रेंड करीन एक जगह फरिश्तों को कहा और एक जगह शैतान को कहा। यानी जो नेकियों पर अमल करने के लिए आगे बढ़ते हैं उनका करीन कौन बन जाता है? फरिश्ते। और जो गुनाहों के लाइफस्टाइल पर ज़िंदगी गुजारते हैं, जो अल्लाह के खौफ से बिल्कुल गाफिल होते हैं, उनका साथी कौन बनता है? शैतान। अल्लाह ताला ने सूरह क़ाफ़ की आयत नंबर 23 में फरमाया, वक़ाल क़रीनुहू, और उसका करीन कहेगा, उसका बेस्ट फ्रेंड कहेगा, कौन है ये करीन? ये फरिश्ते हैं जो आपकी और मेरी नेकी करने में मदद करते हैं, हौसला दिलाते हैं। हाज़ा मा लदैया अतीद, जब अल्लाह के सामने रोज़े महशर आपके और मेरे आमाल पेश किए जाएंगे तो ये फरिश्ते कहेंगे कि ये मेरा दोस्त है, मैं इसका दोस्त हूँ, अल्लाह इसके इन नेक आमाल को कबूल फरमा ले। सूरह कौफ की आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला ने फरमाया, कौल करीनहू, उसका करीन कहेगा, उसका बेस्ट फ्रेंड कहेगा, रब्बाना, ए हमारे रब, मा अतगैतुहू, मैंने इसको गुमराह नहीं किया, मैंने इसको गलत रास्ते पर नहीं चलाया, मैंने इसको डिवियंट रास्ते पर नहीं चलाया, वाला किन का नफी दलाल बईद, ये तो खुद ही जो था खुली गुमराही में पड़ा हुआ था। ये कौन है करीन, फरिश्ता या शैतान? शैतान, जो आज आपका और मेरा बेस्ट फ्रेंड बनकर आपको और मुझे खूब धोखे देता है, आपको और मुझे कहता है ओ हो क्या हो गया, सुन्नत ही तो है, फॉर गॉड सेक इतनी सख्ती करने की क्या जरूरत है। वही शैतान जो आपको और मुझे कहता है कम ऑन क्या हो गया अगर मेट पर ज्यादा गुस्सा कर लिया, आफ्टर ऑल तुम्हारा राइट था, इतना महंगा क्रिस्टल का ग्लास भी तो तोड़ दिया था। वही शैतान जो आपको और मुझे बच्चों के साथ, शौहर के साथ, ससुराल वालों के साथ या दोस्तों के साथ भी कभी कभी गुस्से का शिकार कर देता है, और जो टीन एज बच्चियां बैठी हैं उनको उनके माँ बाप के साथ रूट करवा देता है, यही शैतान है जो कयामत में आपको और मुझे बिल्कुल तन तनहा छोड़ देगा, जिन लोगों ने इसको अपना साथी दुनिया में बनाकर रखा था। तो ईमान बिल मलाइका आपका और मेरा ऐसे मजबूत होना चाहिए कि आप जब नेकी का इरादा करेंगे इस रमज़ान में, उम्मीद रखें ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह आप पर फरिश्तों को नाजिल करेगा जो फरिश्ते आपकी मदद करेंगे। तो इस तरह से रमज़ान के महीने में ईमान का ये एंगल, ईमान बिल मलाइका का आपका और मेरा स्ट्रॉन्ग होता है। यह आपका और मेरा ईमान कब मजबूत होगा? जब मैं कोई नेकी करने का इरादा करूँ और उस वक्त मुझे ख्याल आए हिम्मत तो नहीं हो रही, अल्लाह हिम्मत देगा और अल्लाह इंशाल्लाह फरिश्तों से मेरी मदद करवाएगा, आपका ईमान मजबूत हो गया। फिर ईमान का एक एस्पेक्ट आता है ईमान बिल कुतुब, यानी कि उन किताबों पर ईमान रखना जो किताबें अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई। तबरानी की ऑथेंटिक नरेशन का मफहूम ये आता है कि अल्लाह ताला ने जितनी भी आसमानी किताबें नाजिल की वो सब की सब रमज़ान के महीने में नाजिल की गई, और कुरान के बारे में तो हम जानते ही हैं कि कुरान को रमज़ान के महीने में नाजिल किया गया। सूरह बकरा की आयत नंबर 185 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, शहरुर रमदान, ये कौन सा महीना है? रमज़ान का महीना है। उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, जिसमें कुरान को नाजिल किया गया। दुनिया भर के मुसलमानों से आप रमज़ान का जिक्र करें तो उनके जहन में पहली चीज़ क्या आती है रमज़ान का सुन के? रोज़े। हमारे जहन में पहले कुरान तो नहीं आता। आप रमज़ान का जिक्र करें तो पहली चीज़ जो आएगी, जो पहली चीज़ आप जहन में स्ट्राइक करेगी, वो रोज़े होगा। अल्लाह ताला ने रमज़ान के महीने को इंट्रोड्यूस कराया है, वो महीना उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, जिसमें कुरान को नाजिल किया गया, यानी ये कुरान का महीना है। तो आपका और मेरा इस रमज़ान में अल्लाह की किताबों पर ईमान कैसे बढ़ना चाहिए कि जो अल्लाह की भेजी हुई फ़ाइनल किताब है यानी अल कुरआन, इसके साथ मैं मैक्सिमम टाइम गुजारूँ, इसके साथ मैं मैक्सिमम वक्त गुजारूँ, ना सिर्फ मैं इसकी तिलावत करूँ बल्कि मैं इसको समझने की कोशिश करूँ, मैं इस पर तफक्कुर करूं, मैं इसको हिफ्ज करने की कोशिश करूं, मैं इसे नमाज में पढूं, कयाम में पढूं, मैं इसे तरावी में सुनूं। मैक्सिमम इस रमज़ान में मुझे अपना ताल्लुक कुरान के साथ डेवलप करना है। जब आप कुरान के साथ वक्त गुजारेंगी तो आपका ईमान बिलकुतुब रिवाइव हो जाएगा, अल्लाह ताला आपका इस किताब पर ईमान बढ़ाएंगे। और ये महीना है ख़ास तौर पर जिसमें आपको कुरान पढ़ना है और कुरान को शेयर करना है अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने शोहर के साथ। ये रमज़ान का महीना आपको बनाना है कुरान का महीना। हदीस में इसके लिए अल्फाज आते हैं, हादा शहरुल कुरान, ये कुरान का महीना है असल में जो रमज़ान का महीना है। ईमान बिल रुसुल हमारा कैसे रिवाइव होता है? हम रोज़े किसकी सुन्नत के मुताबिक रखते हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक। आपको ये चीज़ें रिवायात में मिल जाती हैं कि तमाम अंबिया की शरीयतों में रोज़े की इबादत किसी न किसी फॉर्म में मौजूद रही। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शरीयत दी गई उस शरीयत के साथ इतमाम हुज्जत कर दिया गया। फाइनल अल्लाह ताला ने कमांडमेंट्स अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेज दिए। हम सहरी खाते हैं उन्हीं औकात में जिन औकात में कुरान का हुक्म है, रसूल अल्लाह का हुक्म है। हम रोज़ा रखते हैं उसी तरह से जिस तरह से अल्लाह के रसूल रोज़ा रखा करते थे। हम दिन भर में वही एक्टिविटीज़ करने की कोशिश करते हैं जो रसूल अल्लाह किया करते थे। हम वही दुआएं मांगने की कोशिश करते हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में मांगा करते थे। हम वैसे ही इफ्तार करने की कोशिश करते हैं जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन औकात में किया करते थे। हम तरावी उसी तरह पढ़ने की कोशिश करते हैं जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरावी पढ़ा करते थे या पढ़ाया करते थे। हम उसी तरह कयामुल लैल करने की कोशिश करते हैं जैसे अल्लाह के रसूल किया करते थे। तो जब आप ये सब करती हैं तो आप किसकी पैरवी कर रही हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इससे आपका और मेरा ईमान बिर रसूल जो है वो मजबूत होता है कि मुझे रसूल अल्लाह के नक्शे कदम पर बाकी 11 महीने भी चलना है, बाकी 11 महीने के लिए उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको भी मुझे फॉलो करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अतानी दखल अल जन्ना, जिसने मेरी इताअत की वो कहाँ जाएगा? जन्नत में जाएगा। तो इताअत करना आपका और मेरा फ़र्ज़ है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सुन्नत को सिर्फ सुन्नत कहकर निगलेक्ट कर देना इसके लिए सख्त वईद है। आप कुरान की आयात उठाकर पढ़ें, तकरीबन 41 मुकामात के ऊपर अल्लाह ताला ने जहां अपनी इताअत की बात की है वहां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का जिक्र किया है साथ साथ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। तो इस तरह से ईमान बिल रसूल आपका और मेरा रिवाइव होता है जब हम रमज़ान का महीना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीकों के मुताबिक गुजारने की कोशिश करते हैं। ईमान बिल आखिरा आपका और मेरा कैसे रिवाइव होता है? आप और मैं रोज़ा रखते हैं। दुनिया में कहीं पर 22 घंटे का रोज़ा होता है, कहीं 21 घंटे का रोज़ा होता है, कहीं 19 घंटे का रोज़ा होता है, कहीं 17 आवर्स का रोज़ा होता है। मुख्तलिफ लोगों के एरियाज में, मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट में मुख्तलिफ टाइम पीरियड के रोज़े होते हैं। कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी फैसिलिटीज़ हों, बहरहाल मुसलमान उम्मत में आज भी रोज़े की इबादत मौजूद है। आप और मैं रोज़ा रखते हैं, अपनी दुनिया को, अपने बज़ाहिर ज़िंदगी को मुश्किल में डालते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरेशन का मफहूम आता है, आपने फरमाया, लिसाइमी फरहतानी, रोज़ादार के लिए दो प्लेजर्स हैं, दो खुशियाँ हैं। एक खुशी कौन सी? फरहतुन इंद फित्र ही, वो खुशी, वो प्लेजर जो जब वो रोज़ा इफ्तार करता है तो उसको मिलता है। आपको पानी का वो घूंट ज़रा याद कर लें जो आप अपने हलक से नीचे उतारती हैं, जो आप रोज़ा खोलने के लिए उतारती हैं, चाहे वो पानी का घूंट था, चाहे वो टैंक था, चाहे वो कोई भी ड्रिंक थी, चाहे वो कोई भी जूस था, चाहे दूध था, वो पहला ड्रिंक का जो आपका सिप अंदर जाता है वो आपकी वेन्स तक को रिफ्रेश कर देता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कहलवाया गया कि रोज़ेदार के लिए दो प्लेजर्स हैं, एक जब वो रोज़ा इफ्तार करता है, दूसरा उसको प्लेजर कब मिलेगा? व फरहतुन इंद लिक़ा रब्बी, वो प्लेजर उसको उस वक्त मिलेगा जब वो अपने अल्लाह से, अपने रब से मुलाकात करेगा और जब उसका अल्लाह उसको उस रोज़े का अजर देगा। तो आपके और मेरे लिए ईमान बिल आखिरा ऐसे मजबूत होता है कि आज मैं रोज़ा रखूंगी तो अल्लाह दुनिया में तो मुझे इसका सवाब देगा ही देगा, अल्लाह एक नेकी का अजर 70 गुना बढ़ाकर तो देगा ही देगा, जब मैं आखिरत में अल्लाह से मुलाकात करूंगी तो अल्लाह इसका ख़ास इनाम मुझे देंगे। तो इस तरह हमारा ईमान बिल आखिरा रिवाइव होता है। ईमान बिल कदर, अपनी डेस्टिनी के ऊपर राजी रहना, ये आपका और मेरा कैसे रिवाइव होता है? आपको और मुझे रमज़ान के महीने में एक ख़ास रात को तलाश करने का कहा गया है। कौन सी रात है वो? लैलतुल क़द्र। हम जानते हैं कि वो रात है जिस रात में अल्लाह ताला आइंदा आने वाले साल के तमाम अहकामात जो हैं वो फरिश्तों के हवाले कर देते हैं। लोहे महफूज से वो सारे अहकामात, रिस्क, माल, दुनिया, ज़िंदगी, मौत, ये फरिश्तों के हवाले कर दिए जाते हैं। तो क्या ही अच्छी बात हो कि हम उस रात में अल्लाह की इबादत करते रहें और अल्लाह के हुजूर माफ़ी मांगते रहें और अल्लाह के से तौबा और इस्तग़फ़ार करते रहें। जब हम लैलतुल क़द्र में इबादत करते हैं तो इस तरह से हमारा ईमान बिल क़द्र रिवाइव होता है। हमें मालूम है कि अल्लाह ने जो मेरे नसीब में लिख दिया मैं इस पर राज़ी हूँ, तो हम खूब दुआएँ मांगते हैं। आप जानती हैं कि सदक़ा और दुआ दो ऐसे एलिमेंट हैं जो तकदीर के लिखे को बदल सकते हैं, इसलिए हम इस रात खूब इबादत करते हैं और हमें इस रात में इबादत में गुजारने की तलकीन भी की गई है। तो ईमान के ये सारे एंगल आपके और मेरे सामने रमज़ान के रोज़े के ज़रिए आते हैं। अब जब आप और मैं रोज़ा रखेंगे तो हम ईमान के इन सारे एंगल्स पर फोकस करने की कोशिश करेंगे। हमने अल्लाह पर ईमान भी मज़बूत करना है, हमने फरिश्तों पर ईमान भी मजबूत करना है। खूब नेक काम के इरादे करें, अल्लाह आपकी मदद फरिश्तों के जरिए कराएगा। हमने ईमान बिल कुतुब भी करना है, अपना वक्त मैक्सिमम कुरान के साथ गुजारें। आप उठें तो कुरान पढ़ें, आप सोने लगें तो कुरान पढ़ें, आप हर नमाज के बाद कुरान पढ़ें। सलफ सालेहीन कहा करते थे, इसमें कोई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं है, लेकिन सलफ सालेहीन ये कहा करते थे इसलिए कि बाज़ सहाबा के लिए आता है कि बाज़ सहाबा 10 दिन में कुरान मुकम्मल कर लिया करते थे, बाज़ के लिए आता है कि 7 दिन में कुरान मुकम्मल कर लिया करते थे, बाज़ के लिए आता है कि 3 दिन में कुरान मुकम्मल कर लिया करते थे। तो सलफ सालेहीन कहते हैं कि रमज़ान क्योंकि कुरान का महीना है, तो अगर एक मुसलमान रमज़ान में अपनी कवर टू कवर सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक तिलावत मुकम्मल ना कर सके तो उस इंसान को अपने बारे में मुनाफिकत का शुबा हो जाना चाहिए। कोशिश करके कम से कम एक कुरान मुकम्मल करने की ज़रूर कोशिश करें। हम तजवीद से पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर हम कहते हैं कि मैं तो तेज़ पढ़ नहीं सकती। तेज़ पढ़ना मकसद नहीं है, क्वांटिटेटिवली पढ़ना मकसद नहीं है, एक मरतबा तो पढ़ने की कोशिश करें। और उसके लिए स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप आहिस्ता पढ़ती हैं, आप जल्दी थक जाती हैं, या आप पूरा कुरान की तिलावत रमज़ान में मैनेज नहीं कर पाएंगी, तो आप रमज़ान के आने से पहले तिलावत शुरू कर दें, आप कल से तिलावत शुरू कर दें, आप आज रात से तिलावत शुरू कर दें। क्या मालूम हम में से कितनों को रमज़ान नसीब होता भी है कि नहीं होता, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। अभी भी 7 से 8 दिन हैं, क्या मालूम किसको मलकुल मौत दोबारा आकर देख लें और उस दिन उसके जाने का दिन हो। हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह हमें साथ सेहत ईमान के और बहुत सारी ताकत के अमले सोहले की रमज़ान में दाखिल फरमाए। लेकिन मोमिन अपनी मौत के लिए तैयार रहता है, मोमिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक अपनी मौत को याद रखता है। तो आपने और मैंने इस तरह से ईमान बिल कुतुब को मजबूत करना है कि मैक्सिमम टाइम कुरान के साथ गुजारना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार के मुताबिक रोज़ा रखिए, आपका ईमान बिल रसूल मजबूत होगा। आप इस बात की उम्मीद रखिए कि इस दुनिया में जो भी मुश्किल उठाएंगी, रोज़ा रख के जो भी तकलीफ होगी, जो भी मुशक्क़त उठाएंगी, आप रोज़ा रख के कहें मैं दौरे कुरान पर जा रही हूँ तो मैं तो बहुत थक जाऊँगी, ईमान रखें, ये जाने का अजर आपको अल्लाह देगा। और इसके लिए अल्लाह ताला कह चुके हैं अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा दूंगा, मैं ही इसका अजर दूंगा। तो इस तरह से अपने ईमान बिल आखिरा को मजबूत कीजिए कि हिम्मत के साथ अमल सौले में डट जाइए इस रमज़ान में, और ईमान बिल कदर लैलतुल कदर को तलाश करने की कोशिश कीजिए। स्कॉलर्स कहते हैं कि कोशिश करके आखिर की 10 रातें जो आती हैं आखिरी अशरा, थोड़ी थोड़ी इबादत कोशिश करके आप 10 की 10 रातों में कर लें। ताक रातों में तो ख़ास एहतमाम करें, लेकिन इसके अलावा भी जो आपकी इवन नाइट्स आती हैं, जैसे 22 आ रही है, 24 आ रही है, 26 आ रही है, 28 आ रही है, आप इसमें भी थोड़ी थोड़ी इबादत का एहतमाम ज़रूर करें। तो एक चीज़ आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरेशन से सीख ली कि इस रमज़ान आपने किसके साथ गुजारना है, ईमान के साथ गुजारना है। दूसरी कौन सी टर्मिनोलॉजी है जिसका आपने ख्याल रखना है, एहतिसाब। एहतिसाब क्या है, एहतिसाब सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, यूं समझ लें एहतिसाब तकवा का एक नाम है, तकवा को ही एहतिसाब कहते हैं। रोज़े का मकसद यही था ना कि तुम्हें ताकि तकवा नसीब हो जाए। जो अपनी अकाउंटेबिलिटी करने में कामयाब हो जाता है उसको तकवा मिल जाता है, जिसको एहसास हो जाता है कि मैं अपना हिसाब खुद लूंगी। वो कहते हैं ना कि अपना हिसाब लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए, हासिबू कबला अंतु हासिबू, अपना हिसाब खुद ले लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। अल्लाह ने तो आपका और मेरा एक दिन हिसाब लेना ही है, तो हम खुद दुनिया में कॉन्शियस होकर ज़िंदगी गुजारें। एहतिसाब और तकवा बहुत मिलते जुलते हैं। तकवा क्या है, गुनाहों से बचना। तकवा क्या है, कांटेदार रास्ते पर ऐसे चलना कि किसी कांटे पर किसी स्पाइक पर आपका कदम ना पड़े। तकवा क्या है, अल्लाह के खौफ से गुनाहों को छोड़ देना। तकवा क्या है, अकेले हों तन्हा हों तब भी वही करना जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया है। तकवा क्या है कि आप और मैं अल्लाह की रजामंदी के लिए हर काम करें। हम तकवा तकवा ये टर्मिनोलॉजी इस्लाम में बहुत ज़्यादा सुनते हैं, और कुरान के अंदर तकरीबन 258 अल्फाज जो हैं वो इस तकवा के रूट वर्ड से आते हैं। तकवा का रूट वर्ड है वाओ काफिया। आप में से जो अरबी ग्रामर के स्टूडेंट नहीं हैं, देखिए रूट वर्ड क्या होता है, जैसे हम उर्दू में कोई लफ्ज़ बनाते हैं या अंग्रेज़ी में कोई लफ्ज़ कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो अल्फ़ाबेट से बनता है, उर्दू में हरूफ तहज्जी से बनता है। अरबी ज़ुबान में वो सर्टन कॉम्बिनेशन से बनता है, जैसे एक कॉम्बिनेशन है काफ ता बा, किताब का रूट वर्ड है। अब किताब भी इससे बनेगा, कतीब भी इससे बनेगा, मकतब भी इससे बनेगा, कतबा भी इससे बनेगा, कुतुब भी इससे बनेगा, सबका रूट वर्ड एक ही है काफ ताबा। रूट वर्ड को यूं समझ लें जैसे फलों के अंदर सीड होते हैं, आप जैसा सीड होता है वैसा ही फल निकलता है, या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मैं बीज तो जाके डालूं पपीते का और निकला है आम, ऐसा होता है? ऐसा जन्नत में हो सकता है, सिर्फ वहां कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी है दुनिया में नहीं हो सकता। तो जैसे फलों के बीज होते हैं, जिस बीज का जो फल होगा, जिस फल का जो बीज होगा वही दरख्त आएगा, जैसे रूट वर्ड्स हैं, ये रूट वर्ड भी उसी लफ्ज से मिलते जुलते मफहूम में आते हैं। तकवा की कई डेफिनेशंस आपको डिक्शनरीज में मिल जाते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप यहां से जब उठें, अगर अरबी में नहीं तो कम से कम उर्दू में आपको तकवा की ये डेफिनेशन याद हो जाए। ये एक बहुत प्रोफाउंड डेफिनेशन है जो अरबिक डिक्शनरीज के अंदर आपको मिल जाती है। वो कहते हैं तकवा के चार लेवल्स हैं, यानी तकवा चार चीजों का नाम है। एक अतकवा, क्या है तकवा? ही अल खौफु मिनल जलील, जलील जलाल वाले रब का खौफ रखना, अपने अल्लाह के मेजेस्टी वाले अल्लाह का खौफ रखना। आप सूरह नाजियात आयत नंबर 40 और 41 में पढ़ती हैं, वह अम्मा मन खाफ मकामा रब्बी, जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा, जिसको खौफ हुआ, वह नहा नफ्स अनिल हवा, और उसने अपने नफ्स को टेम्पटेशन से रोका, गलत टेम्पटेशन से रोका, फ इन्नल जन्नत ही अल मावा, उसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगा? जन्नत होगा। तो खौफ आपको और मुझे अल्लाह का रखना, ऐसा खौफ जो आपको और मुझे गुनाहों से दूर कर दे और नेकी में दौड़ा दे, ऐसा खौफ अल्लाह का होना चाहिए। ऐसा खौफ नहीं जो मुझे और आपको पैरालाइज्ड कर दे, ओहो मुझे बहुत डर लग रहा है, ओहो मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा कभी आपने किसी डरने वाले को देखा है कि जंगल में जा रहा हो, उसको शेर नजर आ जाए, आमने सामने शेर भी खड़ा है और खुद भी सांप खड़े हैं, और उसको देखकर बोले जा रहे हैं मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, और भागने का कोई काम ना करे? इसको डर लगना नहीं कहते। डर लगने में ये एलिमेंट शामिल है कि आप डरें और प्रिकॉशनरी स्टेप लें। तो पैरालाइज्ड हो जाना तकवे के खौफ में शामिल नहीं है, बल्कि पहला लेवल है तकवा का, ऐसा खौफ रब्बुल इज्जत का, जलील रब का, जलाल वाले रब का, कि आपको अमल में दौड़ा दे। अब यहां पर कहीं छोटा सा कोई एक कॉकरोच आ जाए और मैं कहूं मैंने वहां तीसरी खातून के पास एक कॉकरोच देखा है, और आप सब लोग कहें डर लग रहा है, डर लग रहा है, और अपनी जगह से हिल कर ना दें, तो उसका क्या मतलब है? आपको कोई डर वर नहीं लग रहा। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आपकी बेटी आपसे कहती रहे अम्मी आई लव यू, अम्मी आई लव यू, अम्मी आई लव यू, और अम्मी कहे बेटा जरा फ्रिज से मेरे पानी का ग्लास ला के देना, क्या है हर वक्त सब काम मुझे ही कहती रहती है, तो अम्मी आई लव यू की गर्दान बेकार हो गई। इसी तरह से हम जुबान से कहते रहे मुझे अल्लाह से डर लगता है, मुझे अल्लाह से डर लगता है, लेकिन वो डर मुझे गुनाहों से ना रोक सके, वो डर मुझे नेकियों पे आगे ना दौड़ा सके, तो इसका मतलब है कि मेरा वो डर का दावा झूठा है। तो तकवा का पहला लेवल क्या है? अतकवा हियल खौफु मिनल जलील। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किंजुल आमाल में दुआ आती है, दुआ तो काफ़ी तवील है, उसका हिस्सा है वज अल खशियत का अखवफल अशिया इंदी, अल्लाह तमाम चीज़ों के मुकाबले में मुझे अपना खौफ अता कर दे, ऐसा खौफ जो मुझे अमल में दौड़ा दे। सूरह रहमान के आखिर में आता है तबारकस्म रब्बी का दिल जलाली वल इकराम, बहुत मेजेस्टी वाला है, बहुत बरकत वाला है वो रब जिसका नाम ऑनर वाला है। ये जलाल लफ्ज आप कहती हैं उर्दू में अल्लाह अज्जा व जल, ये जल्ला का लफ्ज अरबी जुबान में भी किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होता सिवाय अल्लाह के। अल्लाह से अल जलील से डरना, खौफ रखना, ताकि आप और मैं अमल कर सकें। सूरह मोमिन पढ़ें तो वहां पर फिरौन के कौम में से दो लोगों का जिक्र आता है जिनको मोमिन कहा गया, नाम नहीं लिया गया। उन्होंने अल्लाह के रहमत से और अल्लाह ने उनको जो खौफ का इनाम दिया था उसकी वजह से फिरौन के दरबार में खड़े होकर मूसा अलैहिस्सलाम की सपोर्ट की थी, और उनको जो इनाम दिया गया था वो खौफ का इनाम था, उस खौफ ने उनको अमल पर दौड़ा दिया था। तो पहली चीज क्या है? तकवा का लेवल आपने और मैंने इस रमजान में अचीव करना है, अल्लाह का ऐसा खौफ जो आपको और मुझे कहाँ दौड़ा दे? अमल में दौड़ा दे, नेकियों में दौड़ा दे और गुनाहों से दूर कर दे। दूसरा लेवल है इस तकवा का वल अमलु बित्तंजील, जो नाजिल किया गया है उस पर अमल करना। यहाँ व तिलावती बित्तंजील नहीं आया, जो नाजिल किया गया है उसकी तिलावत करना ये नहीं आया, क्या आया है? वल अमलु बित्तंजील, जो नाजिल किया गया है उस पर अमल करना। इस रमज़ान ना सिर्फ मैं और आप कुरान को तिलावत करेंगे, ना सिर्फ आप और मैं कुरान को समझेंगे, बल्कि आप और मैं इस मर्तबा हिम्मत करके कुरान के अहकामात को समझते जाएंगे और अमल में लाते जाएंगे। एक बहुत अच्छी सी मिसाल किसी ने दी, उन्होंने कहा कि आप बुफे में जाते हैं तो वहाँ पर आपके सामने मेज़ भरी ही होती है, बहुत सारे खाने होते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा वो एक ही प्लेट के ऊपर पहाड़ बना लेते हैं, बस 10 तरह की सैलड है तो 10 तरह की सैलड एक ही प्लेट में डाल ली, और उसके बाद वो आते हैं और क्या करते हैं और उस खाने का क्या हाल होता है। क्वांटिटेटिव मैं 10 कुरान ख़त्म करूंगी, किसी ने कह दिया, और एक कुरान के हुक्म पर अमल नहीं किया तो क्या फ़ायदा। तो प्लेट भरने से पहले ये देखें आपको भूख कितनी है। आप देखें एक ज़माना था, अगर आप अपनी नानी दादी से पूछें तो आपकी नानी दादी यकीनन ये कहती होंगी खाने से पहले कुछ नहीं खाते पेट भर जाता है। सुना है आप लोगों ने कभी खाने से पहले कुछ नहीं खाओ पेट भर जाएगा। आजकल हम खाने से पहले क्या खाते हैं, एपिटाइजर खाते हैं कि नहीं खाते एपिटाइजर। आपके मेन कोर्स से पहले एपिटाइजर आता है, लेकिन डिपेंड करता है आपको कितनी भूख लग रही है। कभी कभी आप एपिटाइजर भी बहुत अच्छी तरह खाते हैं और मेन कोर्स भी जो आपका आता है मील वो भी आप खूब मजे से खाते हैं, कभी कभी एपिटाइजर खा के ही पेट भर जाता है। तो डिपेंड करता है आपको भूख कितनी है। ऐसे लगता है रमजान के महीने में अल्लाह ताला कुरान का एक दस्तरखान बिछा देते हैं, छोटी नेकियां, बड़ी नेकियां, जाहिरी नेकियां, बातनी नेकियां, लोगों को नजर आने वाली नेकियां, लोगों को ना नजर आने वाली नेकियां, मीठी नेकियां, कड़वी नेकियां, कड़वी नेकियां भी होती हैं आपको पता है, कुछ दिलों को खुश करने वाली नेकियां, कुछ दिल जलाने वाली नेकियां, इसलिए कि बाज़ नेकियां ऐसी होती हैं जिनको बज़ाहिर करके मज़ा नहीं आ रहा होता लेकिन डीप इनसाइड सुकून होता है कि चलो मैं अल्लाह की बात मान रही हूँ। तो अल्लाह ताला आपकी और मेरे सामने, अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम इस रमज़ान ना सिर्फ कुरान की तिलावत करें बल्कि हम कुरान को समझने के लिए भी अपने अपने घर के नज़दीक जहाँ पर कुरान पढ़ा पढ़ाया जा रहा है वहाँ जाकर बैठें और कुरान को समझें, और फिर हम देखें अपनी अपनी भूख के हिसाब से कि क्या अभी मुझे सिर्फ एपिटाइज़र वाली नेकियाँ करनी है हल्की फुल्की, या मैं हल्की फुल्की नेकियों में आगे बढ़ चुकी हूँ, अब मुझे मेन कोर्स के ज़रिए हैवी नेकियां करके, बड़ी नेकियां करके अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है। हम में से हर एक को खुद डिसाइड करना होगा कि मैं ईमान में किस जगह पर हूँ। जो ऑलरेडी नेकियां कर रहे हैं उनको इस कुरान के दस्तरखान से अपनी नेकियों में इखलास पैदा करना होगा, और जो अभी बहुत पीछे हैं उनको एपिटाइज़र वाली नेकियां अपनी ज़िंदगी में लेकर आनी होंगी। कितने लेवल हो गए तकवा के? 2 लेवल हो गए। एक क्या है? खौफ, अल खौफ मिनल जलील। दूसरा क्या है? वल अमलु बित तंजील। आप चाहें तो आपको अरबी यहाँ बैठे बैठे याद हो सकती है अगर आप मेरे साथ बोल लेंगे। तीसरा लेवल है तकवा का, या तीसरी चीज़ या तीसरा एलिमेंट जो तकवा में आता है वो है वर रदा बिल कदर या वर रदा बिल कलील, दोनों तरह से आता है। अपनी डेस्टिनी पर राजी रहना, अपनी तकदीर पर राजी रहना, या वर रदा बिल कलील, थोड़े पर राजी रहना। अल्लाह ने थोड़ा दिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने कम दिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे माँ बाप दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे बच्चे दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे बहन भाई दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जैसा शोहर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। हर चीज़ पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। जो नहीं दिया स्कॉलर्स कहते हैं उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्यों? इसलिए कि आपको मालूम होगा कि अरबी जुबान में शुक्र के कई दर्जे बताए जाते हैं। जो शुक्र का आखिरी लेवल है, आखिरी दर्जा है, वो उस लेवल को कहा जाता है जिसमें वो शुक्र किया जाता है जब आपको कोई चीज़ नहीं मिली या कोई चीज़ अल्लाह ने आपसे छीन ली, उस पर भी अल्लाह का शुक्र। इसलिए कि अल्लाह ने दुनिया में मुझे मुश्किल में डाल दिया, उम्मीद है कि अल्लाह आखिरत मेरी आसान करेगा। तो जो है उस पर राज़ी रहना। हाँ, स्कॉलर्स कहते हैं कि ये दुनिया के मामले में है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देखो और दीन के मामले में, हमारा मामला उल्टा, हम दुनिया के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखते हैं और फिर हम कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, और हम दीन के मामले में अपने से नीचे वाले को देखते हैं। अरे वो इतना झूठ बोलते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलती, अरे वो दौरे कुरान में भी नहीं जाती, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो दौरे कुरान में भी जाती हूँ। नहीं, नेकियों में आपको और मुझे आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ना है। अल्लाह के सामने सुरखरू होने के लिए थोड़े पर दुनिया पर राजी रहना है और नेकियों में आगे से आगे बढ़ना है। तीसरा लेवल क्या हो गया? वर रदा बिल कदर। चौथा लेवल है वल इस्तेदादु लियौमिर रहीम, जिस दिन अल्लाह से मिलेंगे उस दिन की तैयारी करना। अल्लाह करे जिस दिन हमें मौत आए वो हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन हो। हमने बिल्कुल शुरू में दुआ की थी, अल्लाहुम्मा सब्बित ना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह, ए हमारे अल्लाह हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। और स्कॉलर्स कहते हैं कि कलमा अदा करना इतना आसान नहीं होता मौत के वक्त, इसलिए कि मौत के वक्त इंसान की ज़ुबान पर वो चीज़ आती है जो उसको बहुत प्यारी होती है। अगर ज़िंदगी भर मैंने कलमे के तकाजे पूरे नहीं किए तो मौत के वक्त मेरी ज़ुबान पर कलमा नहीं आ सकता। अगर ज़िंदगी भर मैंने कलमे के तकाजे पूरे करने में वक्त गुजार दिया तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुझे मौत कलमे पर आएगी। वरना दुनिया में जो मुसलमान मरते हैं और जो डॉक्टर्स उनको विटनेस करते हैं वो कहते हैं हार्डली 30% को कलमा पढ़ना नसीब होता है, हार्डली 30% को। वरना इंसान जिस हाल में मरता है क़यामत के दिन उसी हाल में उठाया जाएगा। तो हमने इस आखिरत के दिन की तैयारी करनी है जिस दिन हम रब्बुर रहीम से मिलेंगे। दुनिया वैसे भी गुजर जाएगी, अपनी टेम्पटेशंस को पूरा करते हुए या अल्लाह के अहकामात को पूरा करते हुए। किसकी 60 साल की ज़िंदगी जो है वो बहुत आहिस्ता गुजर रही है गुनाह करते हुए, और कौन कह सकता है कि नहीं मेरी ज़िंदगी तो बहुत आराम आराम से गुजर रही है। साल भी ऐसे गुजरते हैं जैसे सदी गुजर रही है। हम सब तो उलट कह रहे होते हैं, नेकी कर रहे हैं या गुनाह कर रहे हैं, वक्त सभी का गुजर रहा है। कोशिश करें कि नेकियों में गुजार दें। तो तकवा के ये 4 लेवल आपने और मैंने इस रमज़ान ख़ास तौर पर याद रखने हैं। नंबर 1 लेवल क्या था? अल खौफ मिनल जलील, अल्लाह का खौफ रखना, वैसा खौफ जो मुझे और आपको अमल में दौड़ा दे। दूसरा क्या था? वल अमलु बित्तंजील, नाजिल करदा पर अमल करना। इंशाल्लाह इस रमज़ान आपने और मैंने मैक्सिमम कुरान के साथ वक्त गुजारना है और अमल करने की कोशिश करनी है। तीसरा लेवल क्या है? व रदा बिल कदर, जो अल्लाह ने दिया है उस पर राजी रहना। और चौथा क्या है? वल इस्तेदादु लियौमिर रहीम, अल्लाह से जिस दिन मुलाकात होनी है उस दिन की तैयारी करना। अब जब आप कहीं पर भी, चाहे फेसबुक पर, चाहे व्हाट्सएप पर, चाहे अखबार में, चाहे किताब में, चाहे किसी ब्लॉग पर, अब ये जब आप रिवायत पढ़ेंगी तो आपको सबसे अहम चीज़ इस रिवायत में कौन सी लगेगी? ईमान और एहतसाब। बस आपने अपना रमज़ान ईमान और एहतसाब के साथ गुजारना है इंशाल्लाह। अगर हमने ईमान और एहतसाब के साथ रमज़ान गुजार लिया तो हम अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह अपनी रहमत से हमारे पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। और अगर इस एक महीने में हमने हलाल से, जिस हलाल को अल्लाह ने हमें मना फरमाया है सर्टन औकात में, उनसे अपने आप को रोक लिया तो इंशाल्लाह बाकी 11 महीने हम हराम से रुके रहेंगे। अल्लाह हमें हराम से रोके रखेगा इंशाल्लाह। एक तकवा का शेड बस और मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, फिर इंशाल्लाह अपनी बात हम मुकम्मल करते हैं। हम तकवा की बहुत बात सुनते हैं और हमने तकवा के 4 एंगल भी समझ लिए। एक एंगल जो आपके सामने अल्लाह ने कुरान में रखा है, इसको ख़ास तौर पर अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा इस रमज़ान के महीने में। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 133 और 134 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वसारिउ इलल मग़फिरा मिन रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो, व जन्नतिन, और उसकी जन्नत की तरफ, अर्दुहा, जिसका अर्ज क्या है, जिसका विथ क्या है, अस्समावातु वल अर्द, आसमानों और ज़मीनों के बराबर जिसका विथ है, जिसकी गहराई और चौड़ाई है। उद्दत किसके लिए तैयार की गई है? लिल मुत्तकीन। अगर आपने वो 4 लेवल अटेन कर लिए तो वो आपकी और मेरे लिए तैयार की गई है। अल्लाह ने तो आपकी और मेरे लिए जन्नत तैयार करके रखी है और हम हैं कि अपने नफ्स की ख्वाहिशात के पीछे दौड़कर अपने आप को जहन्नम का बासी बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अल्लाह हमें रमज़ान में ऐसे दाखिल करे कि हम पूरे ईमान और एहतसाब के साथ रमज़ान में दाखिल हों और तकवा के साथ यहाँ से निकलें। आयत नंबर 134 में अल्लाह ने फरमाया, कौन है मुत्तकीन? अल्लज़ीन युन्फिकून फिस्सर्राई वद्दर्राई, वो जो खुले और छुपे अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। सही मुस्लिम की रिवायत आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत का मफहूम है, जिसमें आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में तेज़ चलने वाली हवा से भी ज़्यादा सखी हो जाया करते थे। खूब अल्लाह की राह में दीजिए, खूब सदका कीजिए। सदका बलाओं को टालता है, मुसीबत को टालता है, सदका तकदीर में लिखी हुई किसी आफत को बदल सकता है। खूब सदका करें, अल्लाह इस सदक़े का अजर रमज़ान में बढ़ा देगा। अल्लाह ने मुत्तकियों की पहली सिफत बताई कि जो सदका करने वाले हैं। दूसरी सिफत बताई, वल काज़िमीन अल गैज़, कौन है ये? गुस्से पर काबू करने वाले, जिसकी हम सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरों को माफ़ करना पड़ेगा अगर गुस्से पर काबू करना है। देखें, लोग आपको गुस्सा दिलाएंगे, आप कहती हैं मैं गुस्सा करती थोड़ी हूँ, ये बच्चे करते ही ऐसी हरकतें कि मुझे गुस्सा आ जाता है। जब आपको कोई गुस्सा दिलाएगा तभी तो आपको गुस्से पर काबू पाना है। आपने क्या तीर मारा कि आपको किसी ने गुस्सा दिलाया ही नहीं और आपको गुस्सा सारा दिन आया ही नहीं। तो अपने गुस्से पर काबू कीजिए, चाहे आप हक पर हों, अपने गुस्से को पी जाएं अल्लाह के खौफ की वजह से, कि अल्लाह अल जलील है, अल्लाह जलाल वाला है, अल्लाह से बढ़कर गुस्सा किसका हो सकता है। अगर मैं आज अल्लाह के बंदों पर गुस्सा नहीं करूंगी तो उम्मीद है कि अल्लाह रोज़े महशर मुझको अपने गुस्से से महफूज रखेगा, दूर रखेगा। तीसरी सिफत इसके अंदर बताई गई है, वल आफीना अनिन नास, लोगों को माफ कर दें। क्या फायदा कि हम रमजान में खूब रोजे रखें, खूब कुरान पढ़ें, खूब दौरे कुरान अटेंड करें, खूब दुआएं मांगें, लेकिन अपने किसी मुसलमान रिश्तेदार के लिए, अपने किसी मुसलमान भाई के लिए दिल में ग्रज रखें, और जिस ग्रज के साथ रमजान में दाखिल हों उसी ग्रज के साथ रमजान से निकल जाएं। ऐसा नहीं करना, ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता हमारा ऐसा कोई भी अमल, लोगों को माफ ना करने वाला अमल, आपको और मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस आमीन कहने वाली रिवायत के मुताबिक उस कैटेगरी में ले आए, अल्लाह ना करे। तो आपने और मैंने लोगों को माफ करना है। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ऐसे असल में ऐसे मुहसिनीन से ही मोहब्बत करता है। हम शब कदर की दुआओं में दुआ पढ़ते हैं जो रसूल अल्लाह ने सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नाका अफूवन तुहिब्बुल अफवा फाअफू अन्नी, अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, तुझे माफ़ करना पसंद है, तू मुझे माफ़ कर दे। आप और मैं चाहते हैं अल्लाह मुझे और आपको माफ़ कर दे, आप लोगों को माफ़ कर दें। चाहे आप जानती हैं कि आपकी गलती नहीं है, आप सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने वाली बन जाए, आप लोगों को माफ़ कर दें, इंशाल्लाह अल्लाह आपको मुत्तकियों में शुमार करेगा, और आपकी और मेरे लिए ही फिर वो वादा है, वो इद्दत लिल मुत्तकीन वाला। फिर ये जो आपने और मैंने अभी अभी दिल में जितने भी ख्याल आए हम सब के, मुझे बोलते हुए और आपको सुनते हुए, कि इंशाल्लाह इस रमज़ान में अपने अंदर पॉजिटिव तब्दीली लाऊंगी, मैं गुस्सा नहीं करूंगी, मैं खूब सदका करूंगी, मैं लोगों को माफ़ कर दूंगी। तो अल्लाह कहता है सूरह तौबा की आयत नंबर 119 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो, कहें लब्बैक अल्लाहुम्मा, मैं हाजिर हूँ, मैं ईमान लाई हूँ। इत्तकुल्लाह, अल्लाह क्या कह रहा है, क्या करो, अल्लाह का तकवा करो। और कैसे करो अल्लाह का तकवा, कूनू मअस सादिकीन, सच्चे लोगों में हो जाओ, सिद्क वाले लोगों में आ जाओ। आपने जो अपने अंदर पॉजिटिव तब्दीली लाने का फैसला किया है इस पर अब कायम रहिएगा, शैतान आपको इससे गाफिल ना कर दे। अब शैतान आपको ये जो आपने अपने से इरादे किए हैं नेकियां करने के, मैं ज़्यादा कुरान पढ़ूंगी, मैं कुरान हिफ्ज़ करूंगी, मैं ज़्यादा तिलावत करूंगी, मैं कहीं जाकर कुरान को समझूंगी, शैतान आपको मैक्सिमम रमज़ान से पहले ही किसी ऐसी मुश्किल में डालेगा, किसी ऐसे ख्याल में डालेगा कि आपके लिए लगेगा कि ये करना मुमकिन ही नहीं है। लेकिन आप सिद्क के साथ अपने इरादे में जम जाइए, ताकि अल्लाह ताला मुझे और आपको अस-सादिकीन में शामिल फरमाए। आपने और मैंने अल्लाह को सिर्फ अपनी मुश्किलों में याद नहीं करना, बल्कि आपने और मैंने अल्लाह ताला को अपनी खुशियों में भी याद रखना है। तो अल्लाह मुझे और आपको ईमान और एहतसाब के साथ रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। हमने अपने से जो वादे किए हैं अल्लाह सिद्क के साथ, तकवे के साथ उनको मुकम्मल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का यहाँ आना कबूल फरमाए। जिन्होंने इस महफिल को अरेंज किया है अल्लाह उनकी तमाम कोशिश और एफ़र्ट्स को कबूल करें। अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन की बेहतरीन मगफ़िरत फरमाए, तमाम मोमिनीन की, तमाम मुसलमानों की मगफ़िरत फरमाए। अल्लाह सब जाने वालों को भी और जो ज़िंदा हैं हम सब को भी, हमारी औलादों को हमारे लिए बेहतरीन सदक़ा जारिया बनाए। हमें अपने वालिदैन के लिए सदक़ा जारिया बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें खैर आफ़ियत के साथ रमज़ान के महीने में दाखिल फरमाए, ईमान और एहतसाब के साथ रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें नेकियों के मामले में अपने से आगे वालों को देखने की तौफीक अता फरमाए। अपनी नेकियां आपको बहुत ज़्यादा लगेंगी अगर आप अपने से कम नेकी करने वाले को देखेंगी। उनको देखें जो दिन रात अल्लाह की राह में वक्त भी लगाते हैं, इबादत भी करते हैं, क़यामुल लैल भी करते हैं, तरावी भी पढ़ते हैं और कुरान भी पढ़ते हैं। इस रमज़ान में अपनी नींद को कुर्बान कर दें। आपकी रिक्वायरमेंट, बॉडी रिक्वायरमेंट 8 से 6 घंटे 11 महीने हो सकती है। आप अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह कम नींद को मेरे लिए काफ़ी कर दे। जितनी नींद कम होगी उतनी ज़्यादा इबादत का मौका मिलेगा। हम बचपन से सुनते थे सोना भी इबादत है, इतना ना सोएं कि इबादत का मौका हाथ से निकल जाए, ये इबादत का महीना है, ये दुआओं का महीना है, ये कुरान का महीना है, ये सब्र का महीना है, और ये एक दूसरे को माफ़ कर देने का महीना है। अल्लाह ताला मुझे और आपको जब इस रमज़ान से बाहर निकाले और हमें शव्वाल का चांद नज़र आए, तो अल्लाह हमारे तमाम पिछले गुनाह जो हैं वो माफ़ हो गए हों। अल्लाह ताला हम सब का आना कबूल फ़रमाए। जज़ाकअल्लाह खैर। बारकअल्लाह ली व लकुम फ़िल कुरान अल हकीम व नफ़अनी व इयाकुम बी आयाति व ज़िक्र अल हकीम। सुभानकअल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।